ओम शांति। सिया ने पूछा, कलयुग युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, क्या बोले? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगी? शर्म नहीं होगी बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्तिन खेचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा, मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ बैठ भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल की का दाग भाई लागे ही लागे, कितना जति हो, जति अर्थात योगी, कितना जति हो कोई, कितना सती हो कोई, कामिनी के संग काम जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है राम धाम उसका तो फंद गले लागे ही लागे, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। भविष्यवाणी, राम जी सब कुछ सुना गए कि ऐसा ऐसा एक दिन होगा, बाबा भी मुरलियों में बहुत कुछ सुना गए कि एक दिन आएगा ये होगा, एक दिन आएगा वो होगा, एक दिन आएगा ऐसा होगा, एक दिन आएगा वैसा होगा। बाबा भृगु ऋषि है, भारत में भृगु संहिता बहुत प्रसिद्ध है, भृगु नाम का ऋषि था एक, जिसने भृगु संहिता का लिखी, भृगु संहिता में सारी भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणी की विद्या है, वो मानस पुत्र था ब्रह्मा का भृगु, सप्त ऋषियों में एक, तो उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, उसको भृगु संहिता कहा जाता है। बाबा की भी भविष्यवाणियां हैं, बाबा की भी भृगु संहिता है, जिसमें भगवान ने भी साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों में ढेर सारी भविष्यवाणियां की है। कल की क्लास में हमने देखा था अलौकिक आकाशवाणी, आज हम सुनेंगे अलौकिक भविष्यवाणी। कल था इलाही इल्हाम, आज हम चर्चा करेंगे परमात्मा पेशन गोई, पेशन गोई अर्थात भविष्यवाणी, फोरटेलिंग। तो बाबा ने ऐसी ढेर सारी भविष्यवाणियां की है, उसमें से साकार मुरलियों से चुनी हुई ऐसी ये 32 भविष्यवाणियां हैं, जो कुछ वाक्य साकार में आए हैं, कुछ वाक्य अव्यक्त मुरलियों में आए हैं। ऐसी ढेर सारी भविष्यवाणी है बाबा की कि जो बाबा ने कही थी, और इनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां तो साकार हो चुकी है, कुछ बची है अभी, वो होने वाली है। तो ये शिव की भृगु संहिता है। और अगर देखा जाए तो हम भी भृगु ऋषि है, एक एक हम में से, क्योंकि हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। विक्रम वेताल में एक कहानी आती है, विक्रम वेताल पता है ना, राजा विक्रम, वेताल बता, विक्रम प्रश्न पूछता है विक्रम से, और उसकी शर्त है कि तू बोलना मत, तू बोला और मैं चला। और लंबा रास्ता है, वेताल कहता है चलो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, और कहता है कि एक गरीब निर्धन व्यक्ति था, वो एक भविष्यवक्ता के पास गया और पूछने लगा मेरे भविष्य बताओ, इसमें धन है या नहीं है। वो ज्योतिषी कहता है धन बिल्कुल भी, तुम्हारे इधर धन की लाइन ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में रेखा ही नहीं है, धन मिलेगा ऐसी असंभव है। वो कहता है इस जीवन में तुम निर्धन ही रहोगे, कभी भी धनवान नहीं बनोगे। वो व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, पहले ही तो गरीब है, उसमें कोई ऐसी भविष्यवाणी कर दे कि तुम कभी भी धनवान नहीं बनोगे, तो बेचारा दुखी होके घर बार छोड़कर जंगल में भटकने लगता है। और एक दिन उसे सिक्का दिखता है जमीन पर पड़ा हुआ, सोने का। उसको लगता है हो ना हो यहां कुछ है, जमीन खोदता है और घड़ा मिलता है बहुत बड़ा, जिसमें तो बहुत सारे सिक्के हैं सोने के, और वो सारे घड़ा लेके जाता है घर पे। पर फिर सोचता है ये पैसा वैसे भी किसका हुआ है, तो उन पैसों से वो बहुत लोगों की सेवा करता है, बहुत सेवा करता है लोगों की, सारी उम्र उसकी सेवा में लग जाती है। और भविष्यवक्ता ने एक बात ये भी कही थी कि अगर तुम अमीर हुए उसी दिन मर जाओगे, इसके लिए अमीर तो तुम हो गए ही नहीं कभी, अगर गलती से भूल चूक के हो भी गए मर जाओगे। तो ये व्यक्ति को धन तो मिल जाता है और उस धन के साथ पूरा जीवन बिताता है। वेताल पूछता है बता विक्रम ये कैसे हो गया, भविष्यवाणी थी कि अमीर नहीं बनेगा और अमीर बना भी, धन आया भी, तो उसी दिन मर जाएगा। तो ये तो ना मरा और धन भी रहा जीवन पर्यंत, तो विक्रम बता ये कैसे हुआ। विक्रम कहता है उस व्यक्ति के पास धन तो था पर उसने उस धन का अपने लिए उपयोग नहीं किया, इसलिए वो एक रीति से अमीर बना ही नहीं, और क्योंकि वो अमीर नहीं बना इसलिए वो दीर्घायु रहा, चिरायु रहा। धन था पर अपने लिए प्रयोग नहीं किया, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग किया, इसलिए एक अर्थ से वो गरीबी है और एक अर्थ से वो अमीर भी है, और क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो बहुत लंबा जिया। तो भविष्यवाणी, बाबा की भी भविष्यवाणियां ऐसी है बहुत सारी। हम कहेंगे ऐसे कैसे बाबा, आपने तो ऐसा कहा था, ब्रह्मा ने कहा था मैं साथ रहूंगा, ये तो चला गया, फिर बाद में पता चला वो है अभी भी अलग रीति से विद मॉडिफाइड वर्शन। तो बाबा की ऐसी भविष्यवाणी है। उससे भी पहले और एक चीज समझने जैसी है, क्या हम अपना भविष्य बता सकते हैं, क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं, क्या हर व्यक्ति अपना भविष्य जान सकता है, हाँ या ना? कौन सी विधि है भविष्य जानने की? हमारे पास कोई आए और कहे कि मेरा भविष्य बताओ, हम क्या कहेंगे? कम से कम 10 विधियां हैं भविष्य जानने की। सबसे पहली तो है ज्योतिष विद्या, कोई माने या ना माने वो विद्या तो है और पुरातन विद्या है। इस ज्योतिष विद्या में कम से कम 130, 132 कितने सभी शाखाएं हैं, जिसे जाना जा सकता है। दूसरा है स्वप्न। स्वप्नों से भविष्य को कई लोग जान सकते हैं, ख्वाब की ताबीर करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जो स्वप्न आया उससे यह पता चलता है कि क्या बनने वाला है व्यक्ति। या कभी कभी ऐसे होते हैं जो हम बनने वाले, जो होने वाला है वो पहले दिख जाता है। जैसे आज शाम को क्या होने वाला है व्यक्ति को सुबह ही दिख जाता है। तो स्वप्न भी एक मेथड है भविष्य को जानने की। तीसरा है विचार, संकल्प। ये सीधा साधा है, जैसे विचार है वैसे तुम बनोगे सारे दिन भर। लो विचार है बहुत, वैसा ही बनेगा। निगेटिव विचार है वैसा ही भविष्य निर्माण होगा निगेटिव। उसके बाद है टेलीपैथी। टेलीपैथी भी एक मेथड है जिससे भविष्य को जाना जा सकता है। उसके बाद है हिप्नोसिस, सम्मोहन। सम्मोहन में व्यक्ति को लेके जाया जाता है और वो ये पास्ट तो कर दिखता ही है उसको, फ्यूचर भी दिख सकता है कि हिप्नोसिस से फ्यूचर में लेके जा सकते हैं, तो वो भी एक मेथड है। उसके बाद में एक मेथड है संकेत। संकेत होने लगते हैं, जैसे आंख फड़फड़ाने लगती है, कौवा चिल्लाता है, और ऐसे। इसकी तो बहुत ही बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। हाथ में खुजली, उसकी लिस्ट है। हमने वो भी कभी निकाली की, निकाल के रखी थी संसार में जो मान्यता है कि ये संकेत हुए मतलब ये होने वाला है, तो संकेत। उसके बाद में है छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। क्या होने वाला है पहले ही पता चल जाता है। व्यक्ति दिख रहा है, पता है वो मरने वाला है। जैसे जगदीश भाई जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था एक हफ्ता पहले, महात्मा गांधी शायद जाएंगे, पर ये बताया नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती। कई लोगों को पता चल जाता है कि ये होने वाला है। अपने लिए भी कई लोगों को पता चल जाता है, जैसे विनोबा भावे। कई लोगों को पहले ही पता चल जाता है मैं जाने वाला। विवेकानंद, ब्रह्मा बाबा, पहले ही पता चल गया। स्वामी विवेकानंद 15 दिन पहले वो पंचांग लेके बैठे, जैसे कौन सी डेट जाऊं सोच रहे थे, ये जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं, कौन सी तारीख को जाऊं। और जाने का जब समय आया, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, ध्यान मग्न हो गए, समाधि, ब्रह्मरंध्र, शरीर छोड़ दिए। और बहुत सारे संकेत पहले ही देखे गए, मेरे जाने के बाद ये करना, मेरे जाने के बाद वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो कई लोगों को पता चल जाता है उनकी मृत्यु का, आभास होने लगते हैं कि हम जाने वाले हैं। तो उसके बाद में परा अपरा विद्या, ये दो विद्याएं हैं जिसकी सिद्धि से भविष्य जाना जा सकता है। एक दूसरी मेथड है पेंडुलम डाउजिंग, डिटेल हमें पता नहीं, पर उससे भी जाना जा सकता है। और फिर उसके बाद में दसवीं मेथड है जैसी मति वैसी गति, ये भी विचारों पर निर्भर है। तो ऐसी कुछ ये विधियां है जिससे आयुर्वेद वाले में भी थोड़ा थोड़ा जान जा सकते हैं। तो बाबा ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे बाबा के महावाक्य है, सीधा जैसे जैसे उठाए हुए मुरलियों से। ऐसे 32 भविष्यवाणी है। सबसे पहले फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। तो ये भविष्यवाणी किसके लिए? डबल फॉरेनर्स के लिए। क्या करेंगे वो? भारत में आएंगे। और जो तीर्थ यात्रा यहां वहां करते हैं सब छोड़ देंगे, सारी तीर्थ यात्राएं छोड़ के भारत में आ जाएंगे। क्यों आएंगे भारत में? डबल फॉरेनर्स कौन बैठा है इधर? क्यों आएंगे भारत में? यहीं के थे, याद आएगी कि वो हमारा ही देश था, हम बिछड़ गए थे, ये हमारा अपना मुल्क है, चलो अपने देश, चलो अपने वतन, घर वापसी। रिटर्न जर्नी करनी है, बहुत रह लिया दुनिया में, तो सारे फॉरेनर्स भारत आएंगे पहली। दूसरा, विदेश से, विदेश की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश के लोग आएंगे और भारत वालों को क्या कहेंगे, उठो, क्यों, तुम्हारे देश में, क्या सुनाने आएंगे, उठो तुम्हारे देश में भगवान आए। महात्मा गांधी की जीवन कहानी में दिखाया है, जब वो लंदन जाते हैं पढ़ने, बहुत विरोध होता है भारत में उनके गांव से कि वैष्णव परिवार के है, विदेश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या घूमते, पता नहीं, बहुत सारी प्रतिज्ञा लिखाई मां ने कि ये नॉन वेज नहीं खाएंगे, क्योंकि शादी तो इधर ही हो गई थी, किसी भी स्त्री से संबंध नहीं जोड़ेंगे, किसी भी स्त्री से दोस्ती नहीं करेंगे, ऐसी बड़ी लिस्ट बना के फिर भेजा था उधर उस समय और जवान थे। और वहां जाने के बाद उनको ऐसे दोस्त मिले वहां, कुछ एक ऐसा दोस्त जो गीता की स्टडी कर रहा है, कुछ ऐसा दोस्त जो बाइबल की स्टडी कर रहा है, उनको शर्म, वो पूछते क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है, उन्होंने लिखा मुझे शर्म आई, इस बात की शर्म आई, ये विदेशी लोग भगवत गीता की स्टडी कर रहे हैं और मैं भारत से आया हूं इनके पास और मुझे अभी तक भगवत गीता का ग भी पता नहीं, क्या है भगवत गीता, वहां जाके स्टडी की उन्होंने पहली बार, तो शर्म आई। उसी तरह विदेशी भारत में आएंगे और भारत वालों को कहेंगे क्या, उठो तुम्हारे देश में भगवान आए। यह दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी। ये तो हो गई है, पहली भी हो गई, दूसरी भी हो रही है, तीसरी भी हो गई। कभी कभी कितना रोड ब्लॉक हो जाता है नीचे जाने के लिए, फ्री कर दे तो लाइन लग जाएगी। हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी हो गई, साकार हो गई। उसके बाद में तुम्हें दिन रात नींद करने का भी समय नहीं मिलेगा, ये आने वाला है, तुम्हें दिन रात नींद करने का भी समय नहीं मिलेगा। क्यों, ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछते हैं एकांत में जाके, जो पार्टी आती है ना रात में, उनसे पूछते, बच्चे आए ठीक है, शाम को आए, फिर रात में सोए, फिर दूसरे दिन बाबा बच्चों से मिलते थे, बच्चे रात में नींद वगैरह आई, हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई, बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर मुरली चलती थी, बच्चों को अच्छी नींद आती है, बाबा की यह नींद पीटी हुई है, इतना दुनिया को संदेश देना है और बच्चों को अच्छे से नींद आती है, तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए, इतने लोगों को संदेश देना बाकी है अभी, ऐसे कैसे नींद आती है तुमको, पहले पूछते थे नींद तो अच्छी आई ना, मधुमेह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना, कुछ खैरियत, सब कुछ ठीक है, और दूसरे दिन मुरली में फिर बच्चों को नींद आती है, ऐसे कैसे नींद आती है। तो एक दिन आएगा तुम्हारा दिन रात नींद करने का समय भी नहीं मिलेगा, भीड़ लग जाएगी, कैसे नींद करोगे, नींद के टाइम पर ही टपक पड़ेंगे। पांचवी, उन गुरुओं की गद्दी भी हिलेगी, भक्ति मार्ग की दुकानें हिलने लगेगी, गुरुओं की गद्दी हिलेगी, अखाड़े हिलेंगे, भक्ति मार्ग की सारी दुकानें हिलने लगेगी, ये भी होने लगेगी, अब भी हो रहा है, हो रहा है। कल हमारे ओपीडी में एक वो कर्नाटक के सन्यासी आए थे, मठ के इंचार्ज हेड है, मठाध्यक्ष, तो वो ब्रह्मा कुमार इसके प्रोग्राम में भी आते हैं और बहनें भी उनके पास मिलने बीच बीच में जाती रहती है, तो काफी सहयोगी है और बहुत अच्छी उनकी धारणा है। हमने पूछा उनको आपकी दिनचर्या कैसी है, सुबह से चालू करते हैं अमृत वेला, फिर शास्त्र पढ़ते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं, दिन भर कुछ कुछ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसे बहुत आखाड़े हैं, धीरे धीरे सहयोगी हो जाएंगी आत्माएं। और फिर पूरे ज्ञान का जब पता चलेगा तब हिलने लगेगी, फिर गद्दियां हिलेगी, ये भी होने वाला है। अच्छा हाँ, अरेबिक लोग आ रहे हैं, मुस्लिम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर प्यास है, प्यास, क्योंकि एडिक्शन इतना ज्यादा है वहां पर, ड्रग एडिक्ट से, वो कैसे भी करके छूटना चाहते हैं उससे, पर उनके धर्म जो है, उस धर्म का जो ज्ञान है उससे नहीं छूट पा रहे, उतना पावर नहीं है उसमें, इसलिए पूछते कुछ भी बताओ। हमको याद है मस्कत में एक ड्रग एडिक्ट्स की एक सभा थी, जिसमें कम से कम 30 लोगों को बुलाया गया था, वो पूरी बस भर के आई थी, जिनका क्लास लेना था, वो जो रिहैब सेंटर है पुनर्वसन, उनसे खास बुलाया था, और वो सारे वो लोग थे कि चरस, गांजा, अफीम ये सब पीने वाले, पर अभी कंटिन्यू 6 मास से, कोई 2 साल से वहीं रह रहा है ग्रुप में, और एक ही लक्ष्य है कि हमको इस एडिक्शन से छूटना है। और वो सारे अरब, मतलब वो कहते हैं ना वैसे, हाँ वो, उसमें से एक ने प्रश्न पूछा था, हाथ खड़ा किया, पहले पूरा सुना ये लेक्चर डी एडिक्शन पर, और फिर पूछा व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता आखिर है क्या, ये उसका प्रश्न था। मुक्ति किसको किसको कहते हैं, मतलब कितनी उसने गुलामी देखी होगी जीवन में, कौन सी गुलामी, मानसिक, मेंटल स्लेवरी, तो उसके अंदर प्यास है, कैसे छूटे, क्या उनके पास धर्म ग्रंथ नहीं है, क्या उनके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, पर छूट नहीं पा रहे। इसलिए एक दिन आएगा ये सारे आखाड़े हिलेंगे। उसके बाद में 8वां, सारे संसार के मनुष्यों में वैराग की फीलिंग होगी, क्या होगा, वैराग आएगा, क्यों क्यों वैराग आएगा दुनिया में, वैराग की लहर क्यों फैलेगी, कारण आशीष भाई, क्यों वैराग फैलेगा संसार में, प्रभाकर भाई, वैराग क्यों फैलेगा, अच्छा एक कारण तो ये हमारी वजह से कि हमने लहर फैलाई, और दुख बढ़ रहा है, दुख के पहाड़ गिरेंगे, खून खराब हो रहा है, खून सफेद हो रहा है रिश्तेदारों का, और धोखा मिल रहा है, और प्राकृतिक आपदाएं आएगी, सब इतना जीवन भर धन कमाया, खलास। कल हम बता रहे थे ज्ञान सरोवर में, 5 लोग हैं ऐसे विश्व के। सबसे पहला जॉन जेकब एस्टर, ये अमेरिका का सबसे पहला मल्टी मिलियनेयर था, अमेरिका का सबसे पहला अमीर आदमी जॉन जेकब एस्टर, जिसकी मृत्यु हुई थी 1912 में टाइटैनिक में, टाइटैनिक जो निकला था लंदन से न्यूयॉर्क के लिए 1912 में, जिसमें लगभग 2224 लोग बैठे थे, 1500 लोग मर गए, टाइटैनिक विश्व की सबसे बड़ी घटना, नाव डूबा जो सबसे पहला बड़ा नाव जो डूबा वो था टाइटैनिक 1912 में, लंदन से चला था, इंग्लैंड से चला था न्यूयॉर्क के लिए, तो उस घटना में ये भी मर गया था। उसने लिखा था मरते समय, ये वो व्यक्ति था जो करोड़पति क्या अरबपति, उसने लिखा आई एम द मोस्ट मिजरेबल मैन ऑन अर्थ, मैं इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूं, पहला। दूसरा जॉन रॉकफेलर, ये ऑयल कंपनी का फाउंडर, अमेरिका का सबसे रिच व्यक्ति, उसने लिखा आई हैव मेड मिलियंस बट दे हैव नॉट ब्रॉट मी एनी हैप्पीनेस, मेरे पास करोड़ों है पर मेरे पास खुशी नहीं है, उन करोड़ों ने मुझे खुशी नहीं दी। दूसरा, तीसरा एंड्रयू कार्नेगी तो अमेरिका का वो व्यक्ति था कि जब मरा तो 10 अरब रुपए थे फिर भी दुखी था, उसने लिखा मिलियनेयर सेल्डम स्माइल, जो करोड़पति है वो बहुत किंचित ही कभी कभी खुशी का स्माइल कर सकते, मुस्कुराते। फिर उसके बाद में हेनरी फोर्ड पता है ना, सबसे पहले कार किसने बनाई दुनिया में, फोर्ड की कंपनी की कारें आती थी, फोर्ड कार। उसने लिखा, आई वॉज हैप्पियर वेन आई वॉज डूइंग अ मैकेनिक्स जॉब। उसने सबसे पहली कार बनाई दुनिया की, वो लिखता है कि मैं तब बहुत सुखी था जब मैकेनिक का काम करता था। इसकी कहानी है बेगर टू प्रिंस की, भिखारी जैसा था, रैक्स टू रिचेस, चत्तिया पहनता था वाले कपड़े, और कितना अमीर बन गया फिर एक दिन। वो लिखता है कि जब मैं मैकेनिक था तब बहुत सुखी था। और दूसरा ये वेंडर बिल्ड, वो लिखता है कि देर इज नो प्लेजर इन इट। उसके पास, वो कहता है मेरे पास $200 बिलियन है, पर उनकी केयर करना करना मतलब जैसे कि तुम्हें मर रहा हूं, ये उसको देखभाल करते करते पैसों की। तो लहर फैलेगी वैराग की, क्यों? दुख होगा, धोखा होगा, और हम हमारे वाइब्रेशंस रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद में अगला नौवा, सारा संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। मेंटल हॉस्पिटल में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? मानसिक रोगी, मनोरुग्ण। कौन से मनोरुग्ण हो जाएंगे? मनोरुग्णता होगी संसार में, उदासी, डिप्रेशन, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा डिप्रेशन। 90% लोग सो नहीं पाएंगे रात को। अभी एट प्रेजेंट ऐसा कहा जाता है अमेरिका में एक तिहाई लोग अमेरिका के सोने स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सोने के लिए। नींद की गोली लेंगे तब नींद आती है, जब तक नींद की गोली नहीं लेते नींद ही नहीं आती है। 1/3 ऑफ अमेरिकन्स, ये उसके आगे की स्टेज है, गोली खाकर भी करवटे बदलते रहते हैं, रात भर नींद ही नहीं है, क्या करे। और हमारे देखो भारत में, आराम से सो जाते हैं, निश्चिंत। लोगों को इधर गदेलों पर नींद नहीं आती, और उधर जाओ रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर ट्रेनें आ रही है जा रही है, और वो भिखारी देखो वहां सो रहा है आराम से, उसको कोई चिंता ही नहीं, ना आवाज से डिस्टर्बेंस है। हाँ, ट्रेन बंद है, क्या हुआ, क्या आज सन्नाटा, ये सन्नाटा कैसा है। कनाडा में सबसे पहली बार ट्रेन चालू हुई थी, कनाडा में जब ट्रेन की खोज हुई थी, तो कनाडा में जो ट्रेन थी पहली, वो सुबह 3 बजे गुजरती थी, सुबह 3 बजे। लोग डिस्टर्ब होने लगे, ये क्या है उपद्रव, बंद करो इस ट्रेन को। कई महीने लगा दिए, एप्लीकेशंस दिए सरकार को, ये ट्रेन बंद करो, ये हमको रात में हमारी नींद खराब करती है, दिन में हमको जॉब में जाना पड़ता है। 3 बजे चलती थी ट्रेन, आवाज करते, और पहले वाली ट्रेन कितनी आवाज करती, झुक 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 झुक, और फिर ट्रेन बंद करा दी गई। पर एक नई समस्या खड़ी हो गई, लोग को नींद ही नहीं आई, फिर बोले वापस चालू करो, क्योंकि वो ट्रेन की आदत पड़ गई थी लोगों को, जब तक ट्रेन नहीं जाती थी नींद नहीं आती थी, फिर उल्टा हो गया परिणाम। तो सारा संसार मनोरुग्णालय बन जाएगा, शफाखाना एक हॉस्पिटल बन जाएगा, सारे मानसिक रोगी होंगे यहां पे। कोई काम का रोगी, कोई क्रोध का रोगी, कोई उदासी का रोगी, ये समय आने वाला है। हमारे कर्तव्य तब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर उनको देख के हम भी रोने लगे, तो जब पेशेंट को देख के डॉक्टर भी रोने लगे, तो कोई कहता है मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, अच्छा तुम्हारे पिताजी को कैंसर हो, वो भी रोने लगे, तो क्या होगा, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर्स को थोड़ा इमोशन से ऊपर रहना पड़ता है, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। रहम दिल तो है अंदर से, परंतु फिर भी बाहर से कठोर हृदय, नहीं तो वो भी पेशेंट बन जाएगा, उसको रोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आउच यही तो सुनना पड़ता है। उठते ही पेशेंट की दर्द की आवाज, कराना, दिन रात दुखी दुख, दिन रात दुखी दुख, किसी को यहां दर्द, किसी को वहां दर्द, दर्द नहीं तो एंग्जाइटी, कैसे अभी कैसे, पांच पांच मिनट में पूछते हैं प्रश्न, अभी ठीक है ना पिताजी, आज छुट्टी करेंगे ना, प्लेटलेट बढ़ तो जाएगा ना, कुछ और करना है क्या, कुछ और जांच होगी तो बताओ, कितनी एंग्जाइटी है अंदर ही अंदर। उसके बाद में मधुबन क्या बन जाएगा, शीश महल, ये भविष्यवाणी है, पेशन गोई है भगवान की, ये मधुबन शीश महल बन जाएगा, अर्थात जरा भी काला दाग होगा छिपा नहीं सकेंगे, जरा भी थोड़ा सा भी काला दाग होगा उभर के आ जाएगा एक दिन, इसलिए अभी से ही सारे दागों को मिटाने का अभ्यास करना, एक दाग भी ना रहे, स्पॉटलेस कैरेक्टर, चरित्र स्पॉटलेस, कोई भी विकार का अंश ना हो, वो छोटा सा अंश ही वंश बन जाएगा, छोटा सा अंश, इतनी सी कमी छोड़ के रखती थी बस, जैसे अकिलिस की मां ने उसको डुबाया उस नदी में, सारा वज्र का बन गया परंतु वो छूट गया एड़ी, बस दुश्मन को वही पता चल गया, वहीं पे तीर मार दिया, मर गया। नेपोलियन के शत्रु को पता चल गया बिल्लियों के बारे में, बिल्लियां छोड़ दी, नेपोलियन मर गया, पकड़ा गया। अगला, किसी भी पतित को यहां आने की को अलाउ नहीं किया जाएगा। मधुबन क्या बन जाएगा, शीश महल भी, और ये दूसरी जगह कहा है कि अगर कोई कहे मैं सर काट के देता हूं तो भी मधुबन के अंदर एंट्री नहीं होगी, किसी भी पतित को, केवल प्योर सोल ही मधुबन में एंट्री कर पाएगी, और जो अंदर रह के अपवित्र कार्य करते हैं वो सारे बाहर फेंक दिए जाएंगे, किक्ड आउट यहां से, जो भी अपवित्र कार्य करने वाले होंगे नहीं रह पाएंगे यहां पर, एक समय वो भी आएगा, क्योंकि ये परमात्मा अवतरण भूमि है। उसके बाद में अगली बारहवीं, झाड़ हिलेगा पत्ते गिरेंगे, ये बाबा के महावाक्य है, झाड़ हिलेगा और पत्ते अर्थात यहां से चले जाएंगे, संसार की हवा लग जाएगी, कारण कुछ ना कुछ बन जाएगा, किसी को कोई संकल्प आएगा, किसी को कोई, कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई कारण बनेगा, झाड़ हिलेगा और ये यज्ञ का झाड़ भी हिलेगा, क्योंकि जैसे बेगरी पार्ट में क्या हुआ, फिल्टरिंग हो गया ना, अच्छा निकल गए, और जो पक्के वाले थे रह गए, फिर उन्होंने अपने कितने जस्टिफिकेशंस कारण दिए, ये कारण था वो कारण था, पर जो गए वो गए, और जो रह गए उनको भगवान ने कहां बिठा दिया, देखो आज दादिया कहां बैठी है, हजारों दिल तख्त पर बैठी हुई है। उसके बाद में बाप फिर बाप के पार्ट में नहीं, बाप फिर धर्मराज के पार्ट में मिलेगा, रोल बदलेगा, जैसे एक हीरो है वो चला गया, अब वही दूसरा रूप ले धारण करके आ गया, पहला वाला बहुत ही भोला वाला अनाड़ी था, अब जो आया है वो एकदम खिलाड़ी है, जबरदस्त रूप ही अलग है उसका, हम पहचान नहीं पाएंगे तुम कौन। जैसे एक स्त्री होती है, इसके पहले भी सुनाया था भगवान की बड़ी भक्त होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन होते हैं, कई सारे ऑपरेशन होते हैं, और इतने सब ऑपरेशन होने के बाद उसका चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है, फिर वो कहती है कि नहीं 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 मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, और फिर प्लास्टिक सर्जरी करती है और चेहरा बदल जाता है उसका, और फिर बहुत अच्छी दिखने लगती है, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, जाने लगती है, भगवान का बहुत धन्यवाद करती है, हे प्रभु, ओ लॉर्ड, तेरा बहुत धन्यवाद, और जाते जाते कार से जा रही थी घर, फिर एक्सीडेंट होता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो इस बार मर जाती है, तब तो धन्यवाद कर रही थी, लास्ट एक्सीडेंट में भगवान ने बचा दिया, तेरी कृपा और परंपरा है, तूने मुझे जान लिया, पहचान लिया, तो फिर भगवान से कहती है कि मैंने तेरी इतनी भक्ति की जीवन भर और तूने मुझे मार दिया, भगवान कहते मैं तो आया था बचाने पर मैंने तुझे पहचाना ही नहीं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी, तुमने तेरा रूप ही नहीं जाना, मैं जान ही नहीं कि तुम हो करके। तो यहां भगवान भी अपना नया रूप धारण करके आएगा धर्मराज बन के। हम कहेंगे ये तुम वही हो क्या, मीठा बाबा, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप के दिल में बाप, बच्चों के दिल में बच्चे, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप, बाप के मस्तक पे वो, गालों में वो, होठों में वो, हाथों में वो सब कहां है? बाप का एक ही गीत है, वाह बच्चे वाह। अभी बाबा ये डंडा कहां से लाया आपने? वो वाले गीत कहां है आपके जो आपका ऑल टाइम फेवरेट गीत था, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तब कौन सा गीत गाएगा बाबा? नहीं, गीत कौन सा होगा तब? धर्मराज डंडा हाथ में, आप कौन सा गीत है? वाह बच्चे वाह, खा बच्चे। और कौन सा गीत होगा? पहले बाबा राखी लेके, अभी राखी डंडा लेके आएंगे। नहीं, गीत कौन सा गाएंगे? अभी गाते वाह बच्चे वाह, फिर कैसे आग दिखाएंगे? उसके बाद में ट्रिब्यूनल बैठेगी, 14वां ट्रिब्यूनल बैठेगी। किनके लिए? किनके लिए? जो ट्रेटर है, जो पक्के ट्रेटर है, जो यहां से वहां दल बदलू, जिन्होंने धोखा किया है यहां, हॉर्स ट्रेडिंग। उसके बाद में जार जार रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। कौन सबसे ज्यादा खून के आंसू कौन बहाएंगे? खून के आंसू बहाएंगे ब्राह्मण, जार जार रोएंगे, पश्चाताप, खून के आंसू बहेंगे। दुनिया वाले पानी के आंसू बहाएंगे और ब्राह्मण खून के। 16वीं, एक तरफ प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की क्यों होगी, दूसरी तरफ पश्चाताप करने वाले आत्माओं की क्यों? दो लाइन लगेगी, एक प्राप्ति वाले, एक पश्चाताप वाले। हाय मैंने क्यों नहीं किया, इतना टाइम तो था मुरली पढ़ने के लिए, धारण करने के लिए, नहीं पढ़ी, टाइम कितना वेस्ट कर दिया। उसके बाद में 17वां, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। लग गया। उसके बाद में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, क्या लीला है तेरी। उसके बाद में भीष्म पितामह को कन्याएं बाण मारेगी, श्रीखंडी अब भी मार रही है। उसके बाद में धर्म पिताओं की आत्माएं बाप से दृष्टि लेने आ जाएगी, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, मोहम्मद, बुद्ध, सारे बुद्ध से लेके महावीर से लेके सारे आ जाएंगे, कॉन्फ्यूसियस, जरथूस्त्र, सब आ जाएंगे, धर्मस्थापक जितने दृष्टि लेंगे। उनको पता पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, तब उनके चेहरे फीके पड़ जाएंगे। बाप और बच्चे साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे, 22वीं भविष्यवाणी, बाप और बच्चे। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन क्या होगा, शिव और शंकर को एक कर देंगे, क्योंकि शंकर में ही शिव दिखेगा। उसके बाद में सब आत्माएं मच्छरों सदृश घर वापस जाएंगे, टिड्डियों मिसल, मच्छरों सदृश सरसों मिसल, फिर तुम्हारे नैन जादू की डिब्बी का काम करेंगे। उसके बाद में शिव की बारात जाएगी, उसके बाद में मिरुआ मौत, मल्लुक का शिकार, उसके बाद में बिल्ली के पुंगरे भट्टी में सेफ रहेंगे। सारी दुनिया को आग लग जाएगी, पर जाके राखे साहिया मार सके न कोई। भारत की बागदौड़ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जैसे अभी पॉलिटिक्स में है। एक समय आएगा पॉलिटिकल पावर से सारी बागदौड़ मिलिट्री के हाथ में आ जाएगी, और मिलिट्री से सारी बागदौड़ कृष्ण का जो पिता है बाप, उसको दे देंगे वो मिलिट्री। कृष्ण का जो पिता है, कृष्ण का पिता, भक्ति मार्ग का बात नहीं कर रहे, कृष्ण का जो भी पिता होगा, पहले पॉलिटिकल सत्ता से, क्योंकि धर्म सत्ता से सारी सत्ताएं फेल हो जाएगी। अभी तो कितनी हलचल है पॉलिटिकल सत्ता में, कब क्या होगा पता ही नहीं चलता है पॉलिटिक्स में, तो कौन किधर से उधर, सुबह वो था शाम को ये हो गया, सारी मीडिया के जितने आकलन थे, भविष्यवाणियां, पेशन गोई, सारे अजम्पशंस सब धरे के धरे रह गए। आंखें फटी फटी करके देखने लगे, हाँ ये क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है यहां पर, कुछ भी। सत्ताएं पलट जाती है, सरकारें बदल जाती है, दुश्मन शत्रु बन जाते हैं, शत्रु दुश्मन बन जाते हैं। यह है राजनीति, तो हलचल वाली राजनीति। तो ये सारी राजनीति कहेंगे हमसे नहीं होता ये संभालना, किसको दे देंगे, मिलिट्री को, और मिलिट्री वाले कृष्ण के बाप को, और फिर वहां से नई सभ्यता, नई सरकार, नई संस्कृति चालू होगी, सत्ताएं पलटेगी यहां पर, नई सत्ता, नई सरकार आएगी, ईश्वरीय सरकार, दैवी सरकार, दैवी सभ्यता यहां से चालू हो जाएगी, राजाभिषेक होगा फिर। तो भारत की बागडोर तुम्हारे फिर यहां से कृष्ण के हाथ में आएगी धीरे धीरे, फिर लक्ष्मी नारायण, भारत की बागडोर तुम्हारे हाथों में, फिर इन आंखों से तुम विनाश के दृश्य देखोगे, नहर नजारे देखोगे, फिर तीसवा, फिर से साक्षात्कार की धूम मचेगी, फिर से अर्थात जो पहले मची थी, जो आदि में हुआ वो फिर अंत में होगा, रिपीट होगा ड्रामा, बहुत साक्षात्कार होने लगेंगे। उसके बाद में विदेश से भारत में आने के लिए प्लेन की टिकट भी नहीं मिलेगी, लास्ट प्लेन, और कुछ कुछ वही रह जाएंगे, क्यों, वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों का कल्याण करने के लिए। उसके बाद में लास्ट 32 स्थापना के आदि में जो हुआ वो अंत में फिर होगा। तो ऐसी 32 बेशन पेशन गोई भविष्यवाणियां, प्रोफेसी फोर्टल, ऐसी तो बहुत है, 100 तक बना सकते हैं। और उसके बाद में कुछ और बता रहे हैं, अभी अभी जो मुरली चली थी 30 मार्च 19 संडे, अव्यक्त मुरली रिवीजन थी 30/3/5/84, जिसमें बाबा ने कहा था आखिर वह दिन भी आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, सब साधन तो आपके लिए ही बने हैं ना, जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी, सभी डरकर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे, वह डरेंगे और आप उड़ेंगे, आपको मरने का डर तो है ही नहीं, पहले ही मर गए। और ये तो बताइए 32, अब आप बताओ क्या क्या भविष्यवाणी होगी, ये छोड़कर कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड तुम्हारा होगा, और आबू पूरा क्या बन जाएगा, खाली खर देंगे, और विज्ञान के साधन तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हारी माताओं के चरणों में सन्यासी गिरेंगे, और रक्त की नदियां बहेगी, और धर्म युद्ध होगा, और लाल चिड़े वो तुम्हारा झंडा ले रहे हैं, आबू वाले यहां रहने वाले जो दिखाया वो वरदान में रास्ता बदल देगी नदी, सोने के अंगूठी देने के बाद भी पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, एक ग्लास पानी के लिए भी तड़पेंगे, और वो सेवा वो भी भविष्यवाणी है एक रीति से, और एक गवर्नमेंट हाउस में तुम्हारा म्यूजियम होगा एक दिन, गली गली में सेवा केंद्र होंगे, और तुम चैतन्य म्यूजियम बन जाओगे, चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाओगे, और लाइट हाउस बन जाओगे, और एक कहा था तपस्या, तुम तपस्या में लग जाओगे, है ना, एक समय आएगा कि तुमको एकदम सब पुरुषार्थ करने में लग जाएंगे, और तुम कहां से होगे, तुम्हारे जो तुम्हारा जो अटैची है ना वो तुम्हारी तकिया होगी, और वो पहाड़ है उस पे तुम, वो तुम्हारा बेड होगा, और पहाड़ अपना आसमान चादर बन जाएगी, और समय समाप्ति की ओर, बाबा के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, हाँ ये दाल रोटी मिलेगी, दाल रोटियां, दाल रोटी, हाँ वो नहीं बोलना कि इसमें अचार नहीं है, बाबा पापड़ अचार और वो का है हा? जो भी है और भविष्यवाणी है बाबा की, हाँ पद दिखाई देने लगेगा, हम ये बनने वाले, हर एक को दिख जाएगा ये मैं बनूंगा वो बनूंगा, दूसरे का भी, दूसरे का भी दिख जाएगा, स्वर्ग के झाड़ नजारे दिखाई देने लगेंगे। और शरीर को केवल आत्मा दिखाई देने लगेगी, हाँ तो बल्ब, आंखें बल्ब बन जाएगी, ये तुम्हारा मस्तक क्या बन जाएगा, बोर्ड, बोर्ड बन जाएगा, यहाँ दिखेगा, स्क्रीन बन जाएगी, यहाँ लोगों को साक्षात्कार होगा। और क्यों लगेगी, और क्यों लगेगी लगनी है क्योंकि भगवान कह रहा है लगेगी इसलिए लगेगी। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। तो रामचंद्र क्या कहते सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ये सब खराब बातें भी होगी पर उसके साथ कुछ अच्छी बातें भी होगी जो कि भगवान ने कही, जितनी घनेरी रात होगी उतना उतना सवेरा उजियारा होगा, उजला उजला एक रोशन मुस्तकबिल होगा, जितनी काली ये रात है, जितनी रात की तारीकी है उतना सवेरा होगा एक दिन, तो ऐसा तो होना है। अच्छा, ओम शांति।
चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे जीरे, सिया ने पूछा भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। कन्यादान पिताही कैसा कन्या दान पिताही, कन्या का धन खाएगा। लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे।